आज हमारे हाथ एक नए फोन वीवो X300 प्रो के स्पेसिफिकेशंस लगे हैं और इसकी चर्चा का सबसे बड़ा कारण है एक नंबर 200। जी हाँ, 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे। क्या ये सिर्फ कागज पर बड़ा दिखने वाला एक मार्केटिंग का तरीका है या वाकई ये फोन मोबाइल फोटोग्राफी के नियमों को बदलने वाला है?
यहाँ दिलचस्प सवाल यही है। हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ फोन में दो तरह की कैमरा फिलॉसफी चल रही है। एक तरफ गूगल पिक्सल जैसे फोन्स हैं जो सॉफ्टवेयर और एआई प्रोसेसिंग से कमाल करते हैं, और दूसरी तरफ वीवो जैसे ब्रांड हैं जो जबरदस्त हार्डवेयर पर दाव लगा रहे हैं। वीवो X300 प्रो इसी दूसरी फिलॉसफी का एक कह सकते हैं चरम उदाहरण लगता है। तो आज की हमारी पड़ताल का मिशन ये समझना है कि ये अल्टीमेट कैमरा फ्लैगशिप का दावा किस हद तक सच है।
बिल्कुल, तो चलिए इस पड़ताल की शुरुआत इसके बाहरी डिजाइन से करते हैं। बताया गया है कि इसका डिजाइन प्रीमियम है, प्रोफाइल पतला है, लेकिन एक चीज जो नजरअंदाज नहीं की जा सकती वो है इसका वजन, 226 ग्राम। ये आज के जमाने में काफी भारी है और इसके पीछे की वजह साफ है, वो बहुत बड़ा कैमरा मॉड्यूल। क्या आपको लगता है कि एक शानदार कैमरे के लिए लोग इतना वजन और साइज बर्दाश्त करने को तैयार होंगे?
तो ये एक बहुत ही जायज सवाल है और यहीं पर डिजाइन और फंक्शन के बीच का वो ट्रेड ऑफ सामने आता है। देखिए, ये फोन साफ तौर पर उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें सबसे पतला या हल्का फोन चाहिए। ये एक स्टेटमेंट पीस है। बड़ा कैमरा मॉड्यूल सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, इसका मतलब है बेहतर सेंसर, बेहतर ऑप्टिक्स
और पेरिस्कोप मैकेनिज्म के लिए जगह।
बिल्कुल, तो कंपनी ने यहाँ एक चुनाव किया है। उन्होंने औसत यूजर के आराम के ऊपर फोटोग्राफी के शौकीन लोगों की जरूरत को प्राथमिकता दी है। 226 ग्राम का मतलब है कि ये आपकी जेब में महसूस होगा और एक हाथ से टाइपिंग करना शायद थोड़ा मुश्किल हो।
लेकिन जब हम फोन को पलटकर सामने से देखते हैं तो इसकी स्क्रीन कैसी है? क्या वो इस प्रीमियम फील को बनाए रखती है? इसमें 6.78 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ।
हाँ, और डिस्प्ले के मामले में कोई समझौता नहीं किया गया है। ये जो LTPO टेक्नोलॉजी है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
अच्छा,
आम भाषा में इसका मतलब है कि स्क्रीन बहुत स्मार्ट है। जब आप तेजी से स्क्रॉल कर रही हैं या गेम खेल रही हैं, तो ये 120Hz पर चलेगी ताकि सब कुछ मक्खन जैसा स्मूथ लगे। लेकिन जैसे ही आप रुककर कोई तस्वीर या टेक्स्ट देखती हैं,
तो ये रिफ्रेश रेट कम कर देती है,
घटाकर 1Hz तक ले आएगी। इसका सीधा फायदा बैटरी लाइफ पर पड़ता है। ये एक ऐसा फीचर है जो अब सिर्फ फ्लैगशिप फोन्स में ही मिलता है।
ठीक है, तो डिजाइन और डिस्प्ले से ये साफ है कि ये एक महंगा और बिना समझौते वाला फोन है। पर अब बात करते हैं इसकी असली ताकत की, इसके इंजन की। इसमें मीडियाटेक का डेमेंसिटी 9500 चिपसेट है जो 3nm टेक्नोलॉजी पर बना है। साथ में 16GB तक LPDDR5X रैम का ऑप्शन है।
और यहाँ एक बहुत दिलचस्प कहानी है। कुछ साल पहले तक मीडियाटेक को एक बजट या मिड रेंज चिपसेट बनाने वाली कंपनी के तौर पर देखा जाता था।
हाँ, फ्लैगशिप का मतलब तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन ही होता था।
बिल्कुल, लेकिन डेमेंसिटी 9000 सीरीज के साथ उन्होंने ये धारणा पूरी तरह बदल दी है। डेमेंसिटी 9500 जैसा चिप दिखाता है कि अब वो सीधे सीधे क्वालकॉम और एप्पल के टॉप टीयर चिप्स को टक्कर दे रहे हैं।
और ये 3nm प्रोसेस का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा पावर एफिशिएंट है,
मतलब कम गर्मी और कम बैटरी की खपत।
एग्जैक्टली, कागज पर तो ये बहुत तेज लगता है, लेकिन अक्सर हमने देखा है, खासकर पुराने मीडियाटेक चिपसेट के साथ, कि लंबे समय तक गेमिंग करने पर गर्मी और परफॉर्मेंस ड्रॉप की समस्या आती थी, जिसे थर्मल थ्रॉटलिंग कहते हैं। क्या इस 3nm चिपसेट से हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये समस्या हल हो गई होगी?
ये एक बेहतरीन सवाल है। थ्रॉटलिंग सिर्फ चिपसेट की वजह से नहीं होती, बल्कि फोन के कूलिंग सिस्टम पर भी निर्भर करती है। 3nm आर्किटेक्चर स्वाभाविक रूप से कम गर्मी पैदा करेगा, जो एक बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन इस तरह के पावरफुल फोन में एक अच्छे वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम का होना भी जरूरी है। अगर कूलिंग अच्छी हुई तो ये चिपसेट लंबे गेमिंग सेशंस और 8K की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे काम बिना थके कर पाएगा।
और अगर नहीं हुई तो
फिर शुरुआती तेजी के बाद परफॉर्मेंस में गिरावट देखने को मिल सकती है। ये एक ऐसी चीज है जो असल रिव्यू के बाद ही साफ होगी।
और एक बात और, इतना मजबूत हार्डवेयर तो है, लेकिन वीवो का सॉफ्टवेयर फन टच OS पहले काफी ब्लोटवेयर और विज्ञापनों के लिए जाना जाता था। क्या एक भारी भरकम सॉफ्टवेयर इस शानदार हार्डवेयर के अनुभव को कम तो नहीं कर देगा?
बिल्कुल, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक गाड़ी के इंजन और ट्रांसमिशन की तरह है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। हाल के सालों में वीवो ने अपने फन टच OS में काफी सुधार किया है, उसे क्लीन बनाने की कोशिश की है। लेकिन क्या ये उतना ऑप्टिमाइज्ड है जितना गूगल का स्टॉक एंड्रॉइड या सैमसंग का वन UI? ये देखना होगा। अगर सॉफ्टवेयर में लैग या गैर जरूरी एप्स हुए तो 16 GB रैम होने के बावजूद वो स्मूथ अनुभव नहीं मिलेगा।
चलिए अब उस फीचर पर आते हैं जिसकी वजह से ये फोन सबसे अलग है, इसका कैमरा। ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप, 50 MP मेन, 50 MP अल्ट्रा वाइड और वो 200 MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा। ये 200 MP का आंकड़ा सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। क्या ये सिर्फ मेगापिक्सल की दौड़ है या इसका कोई असली फायदा भी है?
इसका असली फायदा है, इसे समझने के लिए हमें पेरिस्कोप टेक्नोलॉजी को समझना होगा।
अच्छा।
ज्यादा जूम के लिए लेंस को आगे पीछे जाने के लिए ज्यादा जगह चाहिए होती है, जो पतले फोन्स में संभव नहीं है। पेरिस्कोप सिस्टम लेंस को फोन के अंदर लंबाई में लिटा देता है और एक प्रिज्म का इस्तेमाल करके रोशनी को 90 डिग्री पर मोड़ता है।
ओके, तो इससे ऑप्टिकल जूम के लिए ज्यादा जगह मिल जाती है।
हाँ, और अब इसमें 200 MP का सेंसर जोड़ने का मतलब है कि जब आप जूम करते हैं तो आपके पास क्रॉप करने के लिए बहुत ज्यादा डेटा होता है। नतीजा, डिजिटल जूम के मुकाबले बहुत ज्यादा साफ और डिटेल्ड तस्वीरें।
मुझे याद है एक बार मैं एक कॉन्सर्ट में सबसे पीछे बैठी थी और अपनी पसंदीदा बैंड की एक भी अच्छी तस्वीर नहीं ले पाई। सब कुछ धुंधला और पिक्सेलेटेड था। क्या ये फोन सच में उस समस्या का हल है?
सैद्धांतिक रूप से हाँ, ये फोन ठीक इसी तरह के हालात के लिए बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर वही हार्डवेयर बनाम सॉफ्टवेयर वाली बहस फिर से सामने आती है। वीवो यहाँ रॉ ऑप्टिकल और सेंसर पावर पर भरोसा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक गूगल पिक्सल फोन शायद 50 MP के सेंसर और AI की मदद से उसी सीन को प्रोसेस करके एक अच्छी तस्वीर बना दे।
तो फिर इन दोनों तरीकों में से बेहतर कौन सा है? क्या एक का दूसरे पर कोई स्पष्ट फायदा है?
ये फोटोग्राफर की सोच पर निर्भर करता है। वीवो का हार्डवेयर फर्स्ट अप्रोच आपको ज्यादा असली और अनप्रोसेस्ड डेटा देता है। अगर आप बाद में फोटो को एडिट करना पसंद करते हैं तो ये आपके लिए बेहतर है।
मतलब ज्यादा कंट्रोल मिलता है।
बिल्कुल। वहीं गूगल का कंप्यूटेशनल अप्रोच पॉइंट एंड शूट के लिए बेहतरीन है। आप बस क्लिक करते हैं और AI बाकी काम कर देता है। कभी कभी ये तस्वीरें असलियत से भी ज्यादा अच्छी बना देता है, जो कुछ लोगों को पसंद आता है और कुछ को नहीं।
और सिर्फ जूम ही नहीं, सोर्स में बताया गया है कि ये पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, मैक्रो सब में अच्छा है और 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। लेकिन 8K वीडियो, क्या आज के समय में इसका कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल है? ज्यादातर लोगों के पास तो इसे देखने के लिए 8K TV भी नहीं है।
ये भविष्य की तैयारी है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। 8K वीडियो शूट करने का एक बड़ा फायदा यह है कि वो बाद में वीडियो को क्रॉप और रीफ्रेम कर सकते हैं
क्वालिटी खोए बिना।
हाँ, बिना क्वालिटी खोए। मान लीजिए आपने एक वाइड शॉट लिया तो एडिटिंग के समय आप उसे एक टाइट क्लोजअप शॉट में बदल सकते हैं और वो फिर भी 4K क्वालिटी का रहेगा। लेकिन हाँ, एक आम यूजर के लिए ये अभी भी एक जरूरत से ज्यादा वाला फीचर है और ये बहुत ज्यादा स्टोरेज और प्रोसेसिंग पावर की मांग करता है।
और जब बात प्रोसेसिंग पावर की आती है तो बैटरी का सवाल उठना लाजमी है। इतनी बड़ी स्क्रीन, इतना पावरफुल प्रोसेसर और 8K रिकॉर्डिंग, क्या बैटरी इसका साथ दे पाएगी? इसमें 6510 mAh की बैटरी है जो काफी बड़ी लगती है।
6100 mAh आज के मानव बैटरी हिसाब से बहुत बड़ी बैटरी है। ज्यादातर फ्लैगशिप फोन 5000 mAh के आसपास ही रहते हैं और ये बड़ी बैटरी जरूरी भी है। 3nm चिपसेट और LTPO डिस्प्ले बैटरी बचाने में मदद करेंगे, लेकिन जब आप गेमिंग करेंगे या 8K वीडियो शूट करेंगे तो पावर की जरूरत पड़ेगी। ये बैटरी सुनिश्चित करती है कि भारी इस्तेमाल के बाद भी फोन एक पूरा दिन आराम से निकाल ले।
लेकिन मेरा एक सवाल है, मान लीजिए मैं 8K में 10-15 मिनट का वीडियो शूट कर रही हूँ, क्या ये बैटरी अचानक से 30-40% गिर जाएगी? असल दुनिया में इसका प्रदर्शन कैसा रहेगा?
ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। 8K रिकॉर्डिंग शायद किसी भी स्मार्टफोन के लिए सबसे ज्यादा बैटरी खाने वाला काम है। हाँ, 10-15 मिनट की रिकॉर्डिंग में बैटरी में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है।
तो फिर फायदा क्या?
यहीं पर 90 W की फास्ट चार्जिंग काम आती है। कंपनी का दावा है कि अगर बैटरी खत्म हो भी जाए तो आप कुछ ही मिनटों में फोन को इतना चार्ज कर लेंगे कि वो अगले कई घंटों तक चल सके। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है।
और 90 W के वायर्ड चार्जिंग के सामने क्या वायरलेस चार्जिंग की स्पीड बताई गई है? अक्सर फ्लैगशिप फोन्स में भी वायरलेस चार्जिंग बहुत धीमी होती है, और क्या इतनी तेज चार्जिंग लंबे समय में बैटरी की सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाती?
सोर्स में वायरलेस चार्जिंग की स्पीड का जिक्र नहीं है, लेकिन आमतौर पर यह वायर्ड चार्जिंग से काफी कम होती है, शायद 50 W के आसपास। जहां तक बैटरी के सेहत का सवाल है, कंपनी अब स्मार्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है।
अच्छा,
मतलब फोन रात में धीरे धीरे चार्ज होता है और आपके उठने से ठीक पहले 100% होता है। तो हाँ, सैद्धांतिक रूप से बहुत तेज चार्जिंग बैटरी पर ज्यादा दबाव डालती है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने इस असर को काफी कम कर दिया है।
ठीक है, तो हमने डिज़ाइन, परफॉर्मेंस, कैमरा और बैटरी सब पर गहराई से बात कर ली। अब सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं, ये मिलेगा कब और कितने में? सोर्स के मुताबिक भारत में इसकी लॉन्च डेट 2 दिसंबर 2025 अनुमानित है और शुरुआती कीमत लगभग 75,999 रुपये हो सकती है, और ये जानकारी अनौपचारिक है। इस कीमत पर इसका मुकाबला सीधे सीधे एप्पल और सैमसंग के टॉप मॉडल से होगा।
और यही इस फोन की सबसे बड़ी चुनौती है। 76,000 रुपये की कीमत पर लोग सिर्फ स्पेसिफिकेशंस नहीं देखते, वे एक ब्रांड, एक इकोसिस्टम और सॉफ्टवेयर अपडेट का भरोसा भी खरीदते हैं,
जिसमें एप्पल और सैमसंग बहुत मजबूत है।
बिल्कुल। तो सवाल यह है कि क्या एक यूजर आईफोन 17 या सैमसंग गैलेक्सी S25 को छोड़कर वीवो X300 Pro को चुनेगा सिर्फ उसके 200 MP कैमरे के लिए? इसका जवाब खरीदार की प्राथमिकता पर निर्भर करता है।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को संक्षेप में इसके फायदे और नुकसान में बांटें, तो वो क्या होंगे?
फायदों की बात करें तो सबसे पहले इसका कैमरा सिस्टम, जो ऑप्टिकल जूम के लिए गंभीर हार्डवेयर समाधान पेश करता है।
दूसरा, टॉप टियर परफॉर्मेंस, जो मीडियाटेक के चिपसेट की नई ताकत को दिखाता है। और तीसरा, एक बड़ी बैटरी और बहुत तेज चार्जिंग का कॉम्बिनेशन।
और नुकसान, सबसे पहला तो इसकी कीमत, जो इसे एक बहुत छोटे और खास वर्ग के लिए बना देती है।
सही। दूसरा, इसका 226 ग्राम का वजन और बड़ा आकार, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में असुविधाजनक हो सकता है।
और तीसरा, वीवो का सॉफ्टवेयर और ब्रांड वैल्यू अभी भी एप्पल और सैमसंग के मुकाबले में एक सवालिया निशान है।
बिल्कुल। और अंत में, अगर कैमरा आपकी पहली प्राथमिकता नहीं है, तो इस कीमत से बहुत कम में बाजार में कई शानदार ऑलराउंडर फोन मौजूद है।
तो मतलब निष्कर्ष साफ है? हाँ, निष्कर्ष साफ है, ये फोन सबके लिए नहीं है, और शायद कंपनी का इरादा भी यही नहीं है। ये एक स्पेशलिस्ट डिवाइस है, ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो फोटोग्राफी को लेकर जुनूनी हैं, जो हार्डवेयर की बारीकियों को समझते हैं, और जो अपनी जेब में एक कैमरा रखना चाहते हैं जो फोन का भी काम करे,
न कि एक ऐसा फोन जिसमें कैमरा भी हो।
सही पकड़ा, ये एक साहसिक कदम है, लेकिन इसका बाजार बहुत सीमित होगा।
तो कुल मिलाकर वीवो X300 Pro बिना किसी लाग लपेट के खुद को एक कैमरा फर्स्ट फोन के तौर पर पेश करता है। इसकी पूरी पहचान, इसका डिजाइन, इसका वजन और इसकी कीमत, सब कुछ उस एक 200 MP पेरिस्कोप लेंस के इर्द गिर्द बुना गया है।
और इसी पर एक विचार छोड़ते हैं। आज हमने हार्डवेयर फर्स्ट और सॉफ्टवेयर फर्स्ट फोटोग्राफी की बात की। जैसे जैसे इस फोन जैसा हार्डवेयर और मजबूत होता जाएगा और दूसरी तरफ गूगल जैसा AI और स्मार्ट होता जाएगा, भविष्य की परफेक्ट फोटो का क्या मतलब होगा?
दिलचस्प सवाल है।
क्या ये वो तस्वीर होगी जो बेहतरीन लेंस से असलियत को हूबहू कैद करे, या वो तस्वीर होगी जिसे एक स्मार्ट एल्गोरिदम ने प्रोसेस करके हमारी आंखों को सबसे खुशनुमा लगने वाले रूप में बदल दिया हो? असलियत या परफेक्शन, भविष्य की मोबाइल फोटोग्राफी शायद इसी सवाल का जवाब तलाशेगी।